الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بہت ساری احادیث اور واقعات فضائل درود میں ملتے ہیں. آج انشاءاللہ ہم ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک درود پاک کی فضیلت کے بارے میں سنیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علیہ صلاتن واحدتن صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا رب کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. فرمایا ومن صلی علیہ عشرن صلی اللہ علیہ مئتا، جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے اللہ کریم اس پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ومن صلی علیہ مئتن صلی اللہ علیہ الفا، جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے اللہ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے. لک ایٹ دا بیوٹیفل ملٹیپلیکیشن، ایک درود پاک 10 رحمتیں، 10 درود پاک 100 رحمتیں، 100 درود پاک 1000 رحمتیں، ملٹیپلائی بائی 10 رحمتیں ہوتی جا رہی ہیں. ہم سب چاہتے ہیں سیکیور رہیں، سیف رہیں، بزنس پہ جائیں تو وہاں رحمت ہو، گھر والے پیچھے خیر سے رہیں، حالات بھی ایسے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ سب چیزیں سیف اینڈ سیکیور رہیں. تو رحمت الہی جس پر برستی رہے گی کیسے انشاءاللہ وہ سیف رہے گا، کتنی برکتیں ملیں گی. تو دا مور یو وانٹ ٹو گیٹ دا رحمت آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دا مور یو ریسائٹ درود پاک، جتنی رحمتیں چاہیے آپ اتنا درود پاک پڑھتے جائیں، ملٹیپلیکیشن ہوتی جائے گی. مگر اس حدیث کا جو اگلا پارٹ ہے وہ اور خوبصورت ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ومن صلی علیہ الفن، جو مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھے زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، آقا فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا. یعنی ہم سب کی تمنا تو یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے جنت پہ چلے جائیں، یہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. مگر کاندھے سے کاندھا کس کا ٹچ ہوتا ہے؟ امام صاحب اعلان کرتے ہیں نا، کاندھے سے کاندھا ملا لیں، صفحے درست کر لیں، اٹ مینس ویری نیکسٹ ٹو می، بالکل جو میرے برابر میں ہوتا ہے نا، میرا کاندھا تو اس سے ٹچ ہوتا ہے. تو آقا کیا فرما رہے ہیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 1000 بار درود پاک پڑھنے والے کا ڈور آف ہیون، جنت کے دروازے پر میرا کاندھا اس کے کاندھے سے چھو رہا ہوگا. کتنا کمال کا وظیفہ ہے. تو پلیز اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے. بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی سولوشن بتا دیں، کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیں. سچی بات پتا کیا ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. اللہ کرے کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنے والے بن جائیں اور ہماری زبان درود پاک سے تر رہے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج جو ہمارا موضوع ہے وہ بڑا کمال کا موضوع ہے اور ویری امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اور لیکن اس ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں ون آف دا ہسٹوریکل پرسنالٹی آف اسلام، یعنی اسلام کی تاریخ کی ایک ایسی عظیم شخصیت کا میں نے ذکر کرنا ہے، پھر ہمیں اس سے انشاءاللہ سیکھنا بھی ہے. اور وہ شخصیت ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ ان کا ہے. وہ کون ہیں؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہے. ٹھیک ہے نا، کبھی کبھی تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء وہ کون ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یاد رکھیے وہ انبیاء کے بعد افضل ہیں، لیکن اگر انبیاء کو بھی شامل کر لیا جائے تو پوری یونیورس میں، پوری کائنات میں اللہ کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جو دوسرے نمبر پر شخصیت آتی ہے جن کا مرتبہ سب سے بڑا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. حضرت ابراہیم کی ایک اور خوبصورت، بہت ساری انشاءاللہ باتیں سنیں گے ان کے بارے میں، مگر आप जो है ना ये वो हस्ती हैं कि चारों आसमानी मजाहिब में आपका अदब है। अच्छा, इब्राहिम जो आपका नाम है उसकी वजह तो बताता हूं, लेकिन आप अबुल अंबिया भी कहलाते हैं, यानी आपके बाद जितने नबी हुए वो सब आपकी औलाद से हुए, इसलिए आप अंबिया के वालिद भी कहलाते हैं। अच्छा, आपका नाम जो इब्राहिम है ना, आपके वालिद का नाम तारुख था, और इब्राहिम एक्चुअली सुरियानी जबान का लफ्ज है, और इसके माना है अबुन रहीम, यानी मेहरबान बाप। चूंकि आप बच्चों पर बहुत मेहरबान थे, मेहमान नवाजी आपकी बड़ी मशहूर थी, इसलिए आपको इब्राहिम कहा जाता है। बाज लोगों ने कहा कि इब्राहिम असल में इब्राम था, जिसके माना है बुजुर्ग। चूंकि आप बहुत से अंबिया किराम के वालिद हैं और सारे दीनों में आपकी इज्जत है, हत्ता के मुशरिकीन अरब भी आपकी अजमत करते थे, इज्जत करते थे, इसलिए आपका नाम इब्राहिम हुआ। अच्छा, आपका एक बड़ा प्यारा लकब है अबू दैफान, यानी मेहमान नवाज, बहुत मेहमान नवाज। आपके बारे में आता है कि आपका घर सड़क के किनारे पर था, जो भी गुजरता आप उसको घर ले आते और उसकी मेहमान नवाजी फरमाते, बल्कि मेहमान नवाजी की इब्तिदा जो है वो हजरते इब्राहिम अला नबीना वाले सलातो वसलाम ने की है। अच्छा, फिर इसी तरह आपके बहुत सारे जिंदगी में ऐसे ऐसे वाकयात हुए कि जिसके बारे में इंशाल्लाह जब हम सुनेंगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। याद रहे कि काबे की तामीर जो है वो भी हज़रत इब्राहिम अला नबीना वाले सलातो वसलाम ने की, और अपने बेटे के साथ मिलकर की, हजरत इस्माइल नबीना वाले सलाम के साथ। ये जो मकाम इब्राहिम है ना, ये एक ऐसा मौजजा है। आपको पता है मकाम इब्राहिम को टाइम कितना हो गया है? उलमा कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली 5,000 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है। ये जो बॉक्स है ना मकाम इब्राहिम के ऊपर, ये अब लगा है 2-4-500 साल पहले। पहले ये पत्थर खुले आसमान तले पड़ा होता था, खुले आसमान तले हजारों बारिशें, हजारों आंधियां, हजारों मौसम तब्दील हुए, मगर कमाल देखें वो पत्थर में हजरत इब्राहिम के कदमों का निशान आज भी वैसे ही मौजूद है। यानी अल्लाह ने निशानी कैसे बाकी रखी है? आप जरा सोचें कि 200-400 साल किसी इमारत को छोड़ दें, वो गिर जाती है, वो टूट जाती है, बड़ी पुरानी इमारतें कहां चलती है? 5,000 ईयर्स पुराना ये पत्थर है। और इस मकाम इब्राहिम, ये जन्नत से आया था पत्थर। और इस पत्थर की एक और खूबसूरत बात, हजरत इब्राहिम इस पत्थर पे खड़े होते थे तो काबे की दीवारें तो बहुत ऊंची हैं, तो फरमाया कि जैसे जैसे काबे की दीवार ऊंची होती जाती थी ना, ये पत्थर भी ऊंचा होता जाता था। आजकल जो हमारी साइंस ने लिफ्टें बनाई है ना, सुनो, 1,000 ईयर्स अगो ये पत्थर क्या काम करता था? जब नीचे पत्थर लगाना होता था ये पत्थर नीचे आ जाता था, जब ऊंचा पत्थर लगाना पड़ता था ये पत्थर ऊंचा हो जाता था। तो अल्लाह की कुदरत का ऐसा नज़ारा है, और आज भी मकाम इब्राहिम जो है सुबहान अल्लाह वो मौजूद है। एक इश्क वाली बात भी सुन जाओ, ठीक है? हम अपने बयान में कुछ अकीदे का भी जिक्र कर दिया करते हैं, कोई इश्क रसूल की बात भी कर लेते हैं। उस मकाम पर नमाज अदा करने का, अपनी सजदा गाह बनाने का कुरान हुक्म देता है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, और इब्राहिम के खड़े रहने की जगह को अपनी सजदा गाह बनाओ, अपनी मुसल्ला बनाओ, यहां नमाज अदा करो। अब मुझे बताइए कि जहां हजरत इब्राहिम मौजूद नहीं है, उनके कदमों के निशान हैं, अल्लाह उसकी अजमत का जिक्र कुरान में कर रहा है, तो जहां जिस कब्र अनवर में, जिस रोजे में खुद मुस्तफा करीम मौजूद हैं, तो उस मदीने की बरकतों का आलम क्या होगा, उस रोजा रसूल का आलम क्या होगा, मस्जिद नबवी में जाके सजदों का आलम क्या होगा। तो आप सोचिए कि सुबहान अल्लाह। अच्छा, फिर यहां एक और बात सीखने को मिल रही है, अल्लाह वाले जहां से गुजर जाएं, जहां टच कर दें, जहां वक्त गुजार लें, वो जगह ऐसी मकबूल हो जाती है कि वहां जाएं तो जाकर दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती। तो अगर आज कोई मुकद्दस मकाम पर किसी अल्लाह के वली के मजार पर जाकर अल्लाह से दुआ मांग रहा है, तो ये रहमतों के नुजूल की जगह है, ये कुरान से हमें सीखने को मिल रहा है। लेट्स कम टू द टॉपिक। अब हजरत इब्राहिम अला नबीना वाले सलातो व सलाम जो है ना, वो इतनी अजीम हस्ती हैं कि आपके कुछ स्पेशलिटीज हैं, एक्सक्लूसिविटी है, यानी वो सिर्फ आपके साथ खास हैं। वो चंद बातें अर्ज करता हूं। हजरत इब्राहिम अली सलातो व सलाम नबी पाक अली सलातो व सलाम के बाद सबसे अफजल हैं। इसी तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाद आने वाले सारे नबियों के वालिद भी हैं। अच्छा, इसी तरह आप ही की यादगार हज के अरकान हैं, आप ही काबा शरीफ की पहली तामीर करने वाले हैं। इस तरह जिस पत्थर पर खड़े होकर आपने काबे को तामीर किया, उस पत्थर पर उसके करीब कयाम और सजदे होने लग गए, और कयामत में सबसे पहले आप ही को उम्दा लिबास अता होगा, आपके फौरन बाद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अता होगा। तो ये वो मकाम है हजरत इब्राहिम अला नबीना वाले सलातो वसलाम का। अब आते हैं आपकी जिंदगी के बहुत खूबसूरत वाकयात हैं। मैंने कहा ना कि आज चूंकि टॉपिक मेरा तवक्कुल है तो मैं एक ही वाक्य को रोकूं पर बात करूंगा, वरना हजरत इब्राहिम की सीरत ऐसी सीरत है, मैं नौजवानों को, यंगस्टर्स को, सबको कहूंगा वी मस्ट रीड, क्योंकि आपकी जिंदगी में नमरूद की आग का वाकया भी है, आपकी जिंदगी में खाना काबा की तामीर का, और किस तरह आप अपनी जौजा को, अपने बच्चे को एक बिल्कुल लको दक सहरा में छोड़कर आ गए, कैसा रब पर भरोसा था कि अल्लाह की इताअत में दूध पीते बच्चे को, हजरत इस्माइल को छोड़कर आ गए, मगर वहां छोड़ना पूरे मक्के शहर की आबादी का सबब बन गया। और फिर आप ही की जिंदगी में वो वाकया भी है कि जिसमें क्या हुआ था कि आप अला नबीना वाली सलातु वस्सलाम के साथ जो काबे की तामीर हुई, आप अली सलातु वस्सलाम के साथ बहुत सारे ऐसे वाकयात, वो परिंदों का ज़िबाह करना भी है, आप अली सलातु वस्सलाम के बहुत सारे मौजज़ात हैं जो सुनने और देखने के काबिल हैं, और फिर आपको जब ख्वाब में हुक्म दिया गया कि अपने बेटे को ज़िबाह करो तो आपने अपने बेटे को ज़िबाह करने में भी कसर ना छोड़ी। ये अल्लाह के कैसे बंदे थे, हर कुर्बानी के लिए हर वक्त तैयार हो जाते थे। आपको पता है हज़रत इब्राहिम को औलाद कब मिली थी? हज़रत इब्राहिम अल्लाह से दुआ करते थे इस्मा या ईल, इस्मा या ईल, इस्मा लफ्ज है अरबी का, इस्मा के मानो तो अल्लाह सुन ले, ईल है इब्रानी जबान का लफ्ज, द मीनिंग ऑफ ईल इज परवरदिगार, अल्लाह, ए अल्लाह मेरी सुन ले, मुझे बेटा दे दे, मुझे औलाद दे दे। 99 ईयर्स की एज में जाकर हजरत इब्राहिम को हजरत इस्माइल अता हुए हैं। आप जरा सोचें, दो बातें सीखनी है इसमें, मायूस नहीं हुए, पुकारते रहे हैं, हम तो दो चार महीने कोई दुआ करे काम ना हो, बंदा कहता दुआ का फायदा ही कोई नहीं है। अच्छा मेरी और आपकी हैसियत क्या है? वो खलीलुल्लाह हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, 99 ईयर्स की दुआ, कमाल है ना। इससे सीखने को मिल रहा है कि दुआ से मायूस नहीं होना, और दूसरी बात ये सीखनी है कि अल्लाह वालों को आजमाया भी जाता है। हाँ, आजमाइशें आती हैं, उनको उनको टेस्ट किया जाता है, हमारी दुआ कबूल ना हो अल्लाह से ही बदजन हो जाते हैं, तौबा तौबा, ऐसा कभी नहीं करना। और दूसरी बात, आज हम में से किसी को 5, 10, 15 साल के गैप के बाद बच्चा हो जाए या औलाद ही नहीं हो रही और 10 साल बाद पहली औलाद हो, उसको तो पैर जमीन पर नहीं लगने देते, कितना प्यार देते हैं उसको, केयर करते हैं, भाई बड़ी मुरादों से मिला है, 99 साल की उम्र में बेटा मिला है और हुक्म हो रहा है इस बेटे को ही ज़िबा कर दो। आप इम्तिहान का लेवल तो सोचो यार, इमेजिन नहीं कर सकते। हम में से आज तक किसको ये कहा गया? और आपने कोई हीला बहाना तलाश नहीं किया, आप तो चले गए, और बेटा भी कहता है अब्बा जान कीजिए जो रब का हुक्म है, आपने छुरी भी फिरा दी है, अपना काम पूरा किया उन्होंने। वो तो अल्लाह की शान थी कि छुरी ने हजरत इस्माइल को कोई नुकसान ना पहुंचाया, अल्लाह ने जन्नती मेंढा भेज दिया। अब वो जबीहुल्ला कहलाए हजरत इस्माइल नबीना अलैहि सलातु वसलाम। सीखे इन बुजुर्गों की सीरत से, क्या सबर था, क्या भरोसा था, कुर्बानी के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। हमें छोटी सी कुर्बानी देनी हो तो हम पीछे बांट जाते हैं, कोई ना कोई बहाना तलाश करते हैं। आइए आज मैं हज़रत इब्राहिम का वो वाक्या सुनाना चाहता हूँ जो हमारे जो मेन टॉपिक है उसको कवर भी करेगा और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी एज थी एक रिवायत के मुताबिक 18 या 20 साल। अब जिस एरिया में रहते थे वहां होती थी बुत परस्ती, लोग बुतों की पूजा करते थे, आप उन बुतों से बड़े बेजार थे, अब अल्लाह वाहदहू ला शरीक की इबादत करते थे। तो हर साल उस इलाके में, उस विलेज में एक एक मेला होता था, उसमें शराब पीते थे लोग, नाच गाने करते थे या जो भी उनको खुराफात करने होते थे। तो उन्होंने कहा कि आप भी चलें, हज़रत इब्राहिम को भी बुलाया। आपने कहा मैं नहीं जाता। सारे गांव वाले चले गए, आप अकेले उस गांव में रह गए। आपने कहा ये किधर जाते हैं, बुतखाने में जाकर क्या क्या करते हैं। आप उस बुतखाने के अंदर चले गए, हैं जो भी उनका टेम्पल कह लें, मंदिर कह लें, आप उसके अंदर गए। आपने देखा अजीब अजीब किस्म के बुत बने हुए हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। आपको बड़ा गुस्सा आया, आपने कुल्हाड़ा लिया, किसी का हाथ तोड़ा, किसी का पैर तोड़ा, किसी का नाक तोड़ा कि ये इसको इसकी इबादत करते हैं। और जो सबसे बड़ा बुत था उसके कांधे पर कुल्हाड़ी रखकर आप बाहर आ गए। जब वो सारे लोग शराबे पीकर अय्याशियां कर वापस आए तो जब अपने टेम्पल के अंदर गए तो हैरान हो गए कि बुतों को किसने तोड़ दिया, हमारे खुदाओं को किसने हाथ पैर तोड़ दिए। बड़ा गजब, बड़ा गुस्सा, ढूंढो किसने किया है। कहा एक ही नौजवान है जो हमारे साथ नहीं चला था, ये उसी ने किया होगा। हजरत इब्राहिम अला नबीना वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाए और कहा कि ये किसने किया है, आप बताएं। आपने बड़ा लॉजिकली जवाब दिया कि इन्हीं से पूछ लो ना, जो सबसे बड़ा बुत है इससे पूछ लो, देखो कांधे पे कुल्हाड़ा भी उसी के लगा हुआ है। तो वो कहते हैं ये तो जवाब नहीं देते। अब जरा देखिए लॉजिकली डेमोन्स्ट्रेशन कैसा किया, प्रैक्टिकली, कहते ना कि कुछ चीजें प्रैक्टिकली समझाई जाती हैं। आपने कहा इसी से पूछ लो ना जो सबसे बड़ा है और इसकी कांधे पे कुल्हाड़ा भी रखा है, ये बता देगा किसने तोड़ा है। तो वो कहते हैं कि ये तो जवाब नहीं देते। अल्लाहु अकबर। अब इस पॉइंट को लेकर हजरत इब्राहिम वाला नबी ना वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत, जिसको कहते हैं जवाब दिया, जो आपने जवाब दिया वो कुरान में मौजूद है। आप फरमाते हैं, काला अफतअबुदून मिन दूनिल्लाही मा ला यनफउकुम शैअन वला यदुर्रुकुम। कहा कि तुम अल्लाह के सिवा ऐसे को पूछते हो जो ना तुम्हें नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है। उफ़िल लकुम, तुफ है तुम्हारे ऊपर। वलिमा तअबुदून मिन दूनिल्लाह अफला तअकिलून, कहते तुम इन बुतों को अल्लाह के सिवा पूछते हो, तुफ है तुम पर, तुम्हारे अंदर अकल नहीं है, तुम्हें खुद ना नफा दे रहे हैं ना नुकसान दे रहे हैं, यानी प्रैक्टिकल करके बताया ना। मगर कहते हैं कि जिसकी आंखों पर पर्दा पड़ जाए ना, उसको आप एग्जाम्पल भी दे दें, दलील भी दे दें, आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं, कुरान से निकाल के दिखा दो, हदीस से बता दो, हैं, उसको लॉजिकली समझा दो, जिसको नहीं मानना मैं ना मानूं, उसको नहीं मानना। तो ये शुरू से मामला है कि कुछ लोग नहीं मानते। तो बहरहाल अब इतना जबरदस्त डेमोन्स्ट्रेशन था, होना क्या चाहिए था, तौबा कर लेते कि यार बात तो सही कर रहे हैं, ये बुत अपने आप को तोड़ फोड़ से नहीं बचा सके, हमें क्या बचाएंगे। मगर एंड ऑफ द डे क्या हुआ, उन जालिमों ने क्या कहा कि अब इनको पकड़कर इनको जला दो। कुरान में ये अल्फाज मौजूद हैं, हर रिकू वन सुरू आली हतकुम इन कुन तुम फाइलीन, इनको जला दो और अपने खुदाओं की मदद करो अगर तुम्हें करना है। अब उन जालिमों ने हजरत इब्राहिम अला नबी वाले सलाम को पकड़ लिया, उनको गिरफ्तार किया, और अब प्लान क्या था कि अब आग में डालना है। अच्छा, वो कोई छोटी मोटी आग नहीं थी, एक बंदे को जलाने के लिए बहुत थोड़ी सी आग भी काफी थी। उन्होंने दुनिया की हाईएस्ट फायर एस्टिंग्विश की, इतनी बड़ी आग लगाई कि वो एरिया नो फ्लाइंग जोन बन गया, परिंदा भी ऊपर से नहीं गुजर सकता था, परिंदा गिर जाता था आग के अंदर, इतनी खतरनाक आग। ठीक है, अच्छा जब आग लग गई तो हुआ क्या, आसमान और जमीन की तमाम मखलूकात ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज करना शुरू कर दी कि ए खुदावंद, तेरे खलील आग में डाले जा रहे हैं, अल्लाह इनके सिवा दुनिया में तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं है, इबादत तेरी यही करते हैं, अल्लाह तुम्हें इजाजत दे कि हम इनकी मदद करें। तो अल्लाह करीम ने क्या जवाब इरशाद फरमाया कि वो मेरे खलील हैं, मैं उनका माबूद हूं, अगर इब्राहिम तुमसे मदद तलब करें तो करो उनकी मदद। अब हजरत इब्राहिम अला नबी वाले सलाम जो हैं, उनके पास एक पानी का फरिश्ता आया, कहता हुजूर बस ऑर्डर कर दें, इजाजत दें, अभी बारिश बरसाता हूं बंद हो जाएगी। अब फरमाते हैं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मेरा रब देख रहा है, अगर वो चाहेगा तो मेरी मदद कर देगा, बाकी मुझे तुम्हारी मदद की हाजत नहीं है। अच्छा, अब क्या हुआ, हवा का फरिश्ता आया, कहता है बस ऑर्डर करें, अभी हवा चलेगी, ये सारी आग बुझ जाएगी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मेरा रब देख रहा है, अगर वो चाहेगा तो मदद कर देगा। अच्छा, अब फरिश्तों को तो मना कर दिया, अब ये फरमाते मुझको मेरा अल्लाह काफी है, वही बेहतरीन कारसाज है, जब चाहेगा मेरी मदद फरमाएगा, उसकी मर्जी है, मैं उसमें राजी हूं। अच्छा, अब जब आग में डाला जाने लगा ना, तो अब हजरत जिब्रील आए, कहते हुजूर अल्लाह से तो अर्ज कर दें, आप हमारी मदद नहीं ले रहे, आप अपने रब से तो कहें ना कि वो आपकी मदद करे। आए हाय, जवाब सुनो हजरत इब्राहिम का, लेवल ऑफ यकीन देखो, आप फरमाते मेरे हाल को वो खूब जानता है, हैं, वो देख रहा है ना, हैं, उसे मालूम है मैं किस तकलीफ में हूं, मैं राजी हूं, अगर उसने मदद करनी होगी तो वो मदद कर देगा। हैं, पंजाबी शायर ने एक बहुत खूबसूरत शेर कहा है, और ये एक्चुअली इस पूरे वाक्य को बड़े खूबसूरत अंदाज में डिफाइन करता है कि जे सोना मेरे दुख विच राजी, जे सोना मेरे दुख विच राजी, मैं सुख नू चुल्ले पावा हो। कहते मुझे क्या करना है सुख का, अगर मेरा रब मेरे दुख में राजी है ना, तो मैं भी इसी पे राजी हूं। ये वो लेवल है जो अल्लाह वालों को नसीब होता है। हैं, आप उनके पास अथॉरिटी थी, ऐसा नहीं था बेबस थे, आपको बांध दिया गया था, आपको आग में डाला जाना था, उनके पास अथॉरिटी थी, फरिश्ते आ रहे थे, मगर आप कहते हैं मुझे नहीं मदद की जरूरत तुम्हारी, रब देख रहा है ना, वो कर देगा मदद। अच्छा, एज क्या है, 18 to 20 years, ये कोई बहुत बड़ी एज नहीं थी। इस यंग एज में आपका लेवल ऑफ तवक्कुल और लेवल ऑफ ट्रस्ट ऑन अल्लाह सुभान व तआला क्या था, और अब क्या हुआ, अब आपको आग में फेंक दिया गया। अच्छा, आप आग में जो गए थे ना, आपने एक दुआ पढ़ी थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका लकल हम्दु वलकल मुल्कु ला शरीक लक। अब जब आप आग के शोलों में दाखिल हुए, तो अब अल्लाह करीम की तरफ से आग को ऑर्डर किया दिया गया, आपने नहीं मांगा, मगर रब की तरफ से क्या ऑर्डर दिया गया, वो भी कुरान में मौजूद है। अल्लाह फरमाता, कुल ना या नारुकूनी बरदं व सलामन अला इब्राहिम। रब फरमाता है, हमने फरमाया ए आग हो जा ठंडी और सलामती इब्राहिम पर। उलमा ने इसकी भी तफसीर बयान की कि अगर अल्लाह की तरफ से सिर्फ ये हुक्म होता ना ठंडी हो जा, तो हजरत इब्राहिम को ठंड लगना शुरू हो जाती, इतनी ठंडी हो जाती। आए हाय, अल्लाह ने इंतजाम भी फरमाया तो कैसा फरमाया, ठंडी भी हो जा सलामती वाली भी हो जा। अच्छा आग बुझी नहीं थी, ये भी याद रखिएगा, आग मौजूद थी। ऐसा नहीं हुआ कि हजरत इब्राहिम आग में गए और आग बुझ गई, चैप्टर क्लोज। नहीं, आग जल रही है, हजरत इब्राहिम अंदर है उस आग में। कितनी देर रही है पता है आपको? है कुछ समझते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट के बाद बाहर आ गए। उलमा फरमाते, मुफस्सरीन कहते हैं, बाज़ तफसीरों में लिखा 7 डेज, 7 दिन आग के अंदर रहे। एक तफसीर में है 40 दिन और एक तफसीर में 50 डेज आग में रहे। यानी वो काफिर जो बाहर खड़े थे वो तो समझे चैप्टर क्लोज हो गया है, मगर जब आप बाहर आते हैं आपका बाल भी भीगा नहीं होता है। आग का काम जलाना है, मगर रब चाहे तो वो आग ही हिफाजत करने वाली बन जाती है। हम असल में असबाब पर नजर रख रहे हैं कि यार ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो ये नुकसान हो जाएगा। ये मैं और आप समझ रहे हैं, मेरा रब चाहे तो वो आग को गुलजार बना सकता है। इस पूरे वाक्य पर शुआरा ने बड़ी कमाल की शायरी की है, एक बड़ा कमाल का शेर है। असल में इस वाक्य से बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। एक बात सीखने को पता क्या मिल रही है, हर चीज लॉजिक पर नहीं होती है, हर चीज अकल पर फैसले नहीं करने होते। हमारे पास कैलकुलेटर है ना, हम जिंदगी के बहुत सारे फैसले कैलकुलेटर पर करते हैं। बाज़ औक़ात लोग ज़कात देते ना, कहते हैं यार 10 करोड़ रुपए हैं, हैं 25 लाख रुपए ज़कात निकल जाएगी, ओए होए ये तो पैसे कम हो जाएंगे, हैं 9 करोड़ 75 लाख रह जाएंगे। कैलकुलेटर क्या बता रहा है, पैसे कम हो जाएंगे। एक मेरा आपका कैलकुलेटर है, एक रहमत का कैलकुलेटर है। रहमत का कैलकुलेटर कहता है दो अल्लाह की राह में ये बढ़ेंगे। अकल कहती कैसे बढ़ेंगे भाई, मैं अगर अपने जेब में पैसे दे दूंगा अल्लाह की राह में तो कमी होंगे ना। लॉजिक ये कहती है, रहमत कुछ और कहती है। हर चीज अकल से नहीं होती है। क्या खूबसूरत शेर है, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। ये छलांग जो है ना अकल ने नहीं लगाई थी, ये इश्क ने लगाई थी। अकल तो कह रही थी चल जाएंगे, इश्क कहता है कूद जाओ, रब का हुकुम है ना, रब की रिजा है। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अकल तो अभी सोच रही थी, इश्क ने अपना काम कर दिया। पंजाबी का एक शेर है, इश्क दे चल ही नंबर ले गए, हाँ इश्क दे चल ही नंबर ले गए, अकल मंदा एवं ही उमरा गालियां। हाँ बाज औकात इश्क वाले बहुत आगे बढ़ जाते हैं। और शायर मशरक ने क्या लिखा, क्या कमाल की बात, यकीन करें ये शेर जो है ना, काश ये बात समझ आ जाए। हमें बाज औकात लगता है मसला हल नहीं हो रहा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, बड़ी मुश्किल है, एक ही रिक्वायरमेंट है। शायर मशरक लिखते हैं, अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा। क्या कंडीशन है, लेवल ऑफ ईमान अगर वो हो जाए ना, तवक्कुल ट्रस्ट, अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। आज भी आग गुलजार बनेगी, आज भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बस ईमान वो चाहिए, लेवल वो चाहिए जो हजरत इब्राहिम अला नबीना वाले सलातुस्सलाम को अता किया गया। तो इस वाक्य से अल्लाह की रिजा पर राजी रहना, मुश्किलों पर सब्र करना और इम्तिहान पर अपने आप को स्टेडफास्ट रखना, ये हमें कुरान सिखा रहा है। और ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आजकल हमारा बहुत बड़ा मसला कि ट्रस्ट डेफिसिट है, हमें दुनिया वालों पर भरोसा है, हमें रब पर भरोसा नहीं है। हम सब पर भरोसा करते हैं, हम रब पर भरोसा नहीं करते। हमारी जो है ना अल्लाह से दोस्ती कमजोर हो गई है, हमें लगता है नहीं यार ये मसला कैसे हल, जब तक ये बंदा नहीं मिलेगा ना, जब तक ये फोन नहीं करेगा, जब तक इससे मेरा कॉन्टैक्ट डेवलप नहीं होगा, मेरा कारोबार ही नहीं बढ़ेगा, मेरा मसला ही हल नहीं होगा। ये हमारी भूल है। हैं? मैं आपको कुछ इंशाल्लाह हदीसें सुनाता हूं, फिर इस टॉपिक पे मजीद बात करते हैं कि अल्लाह के हबीब अली सलातुल्लाह क्या फरमाते हैं। अल्लाह के नबी अली सलातुल्लाह फरमाते हैं, ये जो 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 ये तवक्कुल है ना, इसके बारे में आप फरमाते हैं कि अगर तुम ऐसा तवक्कुल करो कि जैसा तवक्कुल करने का हक है, तो अल्लाह करीम तुम्हें ऐसे अता फरमाएगा जैसे परिंदों को रोजी अता फरमाता है। अब ये इतने सारे परिंदे हैं, इनकी रोजी का इंतजाम क्या, इतना कमाल का ये स्टडी अगर आप करें, और हदीस में आया ना कि अल्लाह ऐसे रोजी देगा जैसे परिंदों को देता है। कभी भी आपके घर में भी कोई परिंदा हो, आपने उसके घोंसले में देखा है कोई छोटी सी उसने कबट बनाई हुई हो और 2-4 दिन का चारा जमा किया हो, हैं किसी परिंदे के पास देखा है? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि 800 अरब परिंदे अप्रोक्सीमेटली डेली सुबह घर से निकलते हैं, अपने दरख्तों से उड़ते हैं और जब शाम वापस आते हैं, इन सबको अल्लाह पाक रोजी दे चुका होता है। तवक्कुल का लेवल देखे ना, तवक्कुल है ना, उनको कल का जमा ही नहीं कर रहा। हमारे कबर्ड्स भरे हैं, हमारे अकाउंट्स भरे हुए, हमारी जेबों में पैसे, हमारे अनाज के डब्बे खोले किचन में तो कुछ ना कुछ निकल आएगा, मगर फिक्र ही खत्म नहीं होती, काल करो थिनो, परसों क्या होगा, एक साल बाद क्या होगा, बच्चा बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, ये बूढ़ा हो जाऊंगा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा। अरे अल्लाह के बंदे, सारे काम हमारे सोचने के हैं ही नहीं। जिस रब ने पैदा किया है मुझे, वो मुझे दे रहा है, जिसने बच्चों को पैदा किया उसको भी देगा। बच्ची पैदा नहीं होती हमारी टेंशन शुरू हो जाती है, इसकी शादी का क्या होगा, अरे भाई अभी तो पैदा हुई है तो अभी से टेंशन लेने शुरू कर दी हमने। नहीं, अल्लाह पर भरोसा, यकीन, वो करीम है, वो मालिक है, सारी दुनिया को अता कर रहा है, मुझे भी देगा। है बड़ा खूबसूरत जुमला, उलमा कहते हैं वो चूटी को कन देता है और हाथी को मन भी वही देता है। हाथी की खुराक देखिए है, वो मनो खाता है, चूटी जर्रा खाती है, वो जर्रे चूटी को जर्रा भी पहुंचा देता है और हाथी को मनो भी पहुंचा देता है, तो वो मुझे भी देगा, बस लेवल चाहिए। एक और बड़ी खूबसूरत हदीस पाक है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसको ये पसंद हो कि वो लोगों में सबसे ज्यादा कवि हो जाए। हम में से बहुत सारे लोग बड़े कमजोर होते हैं, डर जाते हैं, खौफजदा रहते हैं, ये उनके लिए हदीस का पार्ट बड़ा जबरदस्त है। आप फरमाते हैं जो ये चाहता है कि सबसे ज्यादा कवि हो जाए तो उसे चाहिए कि अल्लाह अज़्ज़ वजल पर तवक्कुल करे, और जिसको ये पसंद हो कि वो जमाने में बाइज्जत हो जाए उसे चाहिए तकवा इख्तियार करे, और जिसको ये बात पसंद हो कि सब लोगों से ज्यादा दौलतमंद हो जाए तो अपने पास मौजूद शय से ज्यादा उस पर एतमाद करे जो अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है। हम अपने माल पर बड़ा भरोसा कर रहे होते हैं, यार भाई देखो पैसे जमा कर लो, मुसीबत में काम आएंगे, हाँ कोई बीमार हो गया ना तो अच्छा डॉक्टर कर सकोगे, हैं मक्के मदीने जाना है ना तो हज के लिए पैसे चाहिएंगे, ये भूल है हमारी। मुझे बताइए, आपके पास करोड़ों रुपए हैं, आप दुनिया का बेस्ट डॉक्टर हायर कर लें, बेस्ट हॉस्पिटल में चले जाएं, अल्लाह ने शिफा नहीं देनी तो नहीं देनी। हाँ मुझे कोविड का जमाना याद आ गया, हैं पैसे कम थे लोगों के पास, मिन्नतें कर रहे थे कि हॉस्पिटल में कमरा मिल जाए, बेस्ट कमरा ले लिया, सिलेंडर ले लिया, बड़ी सोर्सें लगती थी। मुझे याद है अच्छी तरह, मुझे दुबई से कॉल आई थी, बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा है, बहुत नवाजा, और मतलब वो बंदा ऐसा है कि पूरा हॉस्पिटल खरीद सकता है। उसने मुझे फोन किया कि अब्दुल अबी भाई मेरे चचा जो हैं कोविड हो गया उनको, उस पर बड़ा खौफ था कराची में, पूरा कराची लॉकडाउन में था, कह रहा यार कुछ कर दें, जितने पैसे खर्च होते हैं बताएं, उनको कोई कमरा, उनको कोई हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है, सिलेंडर नहीं मिल रहा, कुछ करें, यानी वो करोड़ दो करोड़ पांच करोड़ भी खर्च कर देते, कुछ नहीं हुआ, और दो से तीन दिन बाद उनका विसाल हो गया। किधर गए पैसे, किधर गई सोर्स है, याद रखिएगा। और आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, बंदे के पास कुछ नहीं है, डॉक्टर कहते नहीं बचेगा, मैं कल एक मरीज से मिल गया हूं, कभी कहेंगे तो आपको इंशाल्लाह यहां ला के उनसे बात करवाऊंगा, मुझे कहते हैं मेरी रिपोर्ट मैंने डॉक्टर को दिखाई का 3 महीने है तुम्हारे पास, 3 महीने, कल रात मेरी मुलाकात हुई, कह रहे इस बात को 4 साल हो गए हैं, हैं मैं उन्होंने अपने रूहानी इलाज कुछ किया, वजाइफ पड़े, मुझे बताया सारा, उन्होंने पूरा सिस्टम बताया, मेरा रब चाहे ना, उन्होंने कहा उसके बाद मैंने कोई बायोप्सी नहीं करेगी, लिवर कैंसर, कह रहे भाई तुम्हें ट्रांसप्लांट करा लो वरना 3 महीने, कहते ना मैंने बायोप्सी कराई ना मैंने कीमो कराई, मैंने मुझे कुछ वजाइफ मिले, मैंने वो वजाइफ किए, अल्लाह ने मुझे, आपके सामने बैठा मेरी महफिल में मेरा बयान सुन रहे थे, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो ये तवक्कुल है ना, ये जो असबाब पर पागल हुए हैं ना हम लोग, अच्छा लोग कहते हैं पैसे होंगे ना खुश रहेंगे, ये भी बेवकूफी है। मैं इस मस्जिद में आया हूं, ये बहुत सारे अमीर बैठे हैं, करोड़पति भी नजर आ रहे हैं, शायद अरबपति भी होंगे, ये भी भूल है, ये हमारे कुछ इस्लामी भाई को इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, यार पैसे होंगे ना तो जरा खुशी मिलेगी, बेवकूफी है आपकी, पैसों से खुशी नहीं मिलती, अगर पैसों से खुशी मिलती होती ना दुनिया में कोई अमीर गमजदा ना होता। मैं आपको एक बड़ी अजीब बात कहने जा रहा हूं, बड़ी तजर्बे की बात कहने जा रहा हूं, दुनिया में जो है ना हर कोई सुखी नहीं होता, जिंदगी की गाड़ी मसाइल के पहियों पर ही चलती है, अमीर के दुख और हैं, गरीब के दुख और हैं, हाँ मशहूर आदमी के दुख, आपको कोई मशहूर लगता है ना, ओए होए क्या फेम है भाई, जिधर जाता है लोग जमा, उससे पूछो वो लाइफ कैसे गुजार रहा है, उसकी टेंशन और है, जिसको कोई नहीं जानता उसकी टेंशन और है, हैं कारोबार करना चाहिए जनाब, कारोबार में बड़ो मजो है, कारोबारी के दुख और हैं, नौकरी वाले के दुख और हैं, तो ये दुनिया मसाइल के साथ ही चलेगी, आपको अल्लाह की रजा पर राजी रहना है। आप दूसरों की मुस्कुराहट देखकर समझते ये सबसे ज्यादा खुश है, कभी बैठो उससे उसके दुख पूछो परेशान हो जाओगे, हमारा तो काम ही यही है ना। आप यकीन करें कभी कभी किसी के घर जाते हैं ना, बड़ा बंगला, वो बड़ा 15 करोड़ की गाड़ियां खड़ी हैं, बाहर गार्ड खड़े हैं, बंदा बोले भाई कमाल ऐश की जिंदगी है, ड्राइंग रूम में ले जाके बोलते हरी साहब आपसे काम है, और कान में आके जब अपना मसला बताता है ना, बंदा बोले यार इससे ज्यादा तो मैं सुखी हूं यार, इतनी बड़ी टेंशन में बेचारा। तो ये ना समझें, ये तो कुरान का ऐलान है, हमें टेस्ट दिया जाएगा, हमें आजमाया जाएगा, बी रेडी फॉर दैट टेस्ट, क्या कहता है कुरान, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफी वल जूई वनक्सिम मिनल अमवाल। कमाल देखिए, रब ने ये फरमान तुम्हें अनकरीब आजमाएंगे। अच्छा, ये नहीं कहा कि आजमाएंगे किसी भी चीज से, लिस्ट भी दे दी है, क्वेश्चन पेपर डिक्लेयर है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफी, तुम्हें खौफ आएगा, कभी दुश्मन का खौफ आता है, कभी बदनामी का खौफ आता है, है? कभी लगता है यार ये चीज खराब हो जाएगी, वल जूई तुम्हें भूख लगेगी, तुम्हारे पैसे कम हो जाएंगे, गुर्बत आ जाएगी, हैं? फिर क्या फरमाया, तो नक्सिम मिनल अम्बाल, तुम्हारे माल कम हो जाएंगे, शिपमेंट खराब हो जाएगी, कोई माल लोगे वो माल बेकार हो जाएगा, आपका ऑर्डर खराब हो जाएगा, होता है कारोबार में। फिर क्या फरमाया, अनफुसी व समरा, तुम्हारी बॉडी में प्रॉब्लम आएगी, चलते चलते बीमारी आ जाती है, बंदा कहता है यार कुछ सब चीजें सेट थी, ये क्या हो गया, ये क्या निकला है टेस्ट के अंदर, ये तो होना था। फिर क्या फरमाया, व समरा, तुम्हारे फल खराब हो सकते हैं। क्या खूबसूरत कुरान ने पहले से बता दिया है, मगर इस टेस्ट में जो पास होगा, क्या फरमाया, वबशरिस साबिरीन, खुशखबरी सबर वालों के लिए, बी रेडी फॉर दैट टेस्ट, और उस टेस्ट से जब आप गुजर जाओगे ना, फिर क्या फरमाया, अल्लदीना इदा असाबतहुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं अल्लाह ही का माल है, अल्लाह ही की तरफ लौट जाना है। तो अल्लाह करे कि हमारा ये माइंड सेट बन जाए कि जब हमारे ऊपर कोई, हमें जैसे पता चले यार लॉस हो रहा है, दुश्मन सामने आ गया है, कोई बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है, कोई टेंशन आ रही है, तो अलार्म बज जाए, मेरा टेस्ट शुरू हो गया है, मैंने वबशरिस साबरीन का मुजदा लेना है, इन्नल्लाह मा साबरीन का इनाम लेना है, मेरा ये टेस्ट टाइम आ गया है, अब मुझे साबित कदम रहना है, अब मुझे शिकवा नहीं करना है, अल्लाह की रजा पर राजी रहना है। यकीन जानो, जिस दिन आपने ये टेस्ट प्रॉपर पास कर लिया, उसके बाद ऐसी खुशखबरी मिलनी है कि आपकी अकल हैरान हो जानी है। बस हमें अल्लाह पर भरोसा रखना है, अल्लाह पर यकीन रखना है, और वो रब कैसे अता फरमाता है, सुभान अल्लाह। एक और ईमान अफरोज वाकया सुने, फिर मैं आपको एक कमाल की आयत सुनाऊंगा। हुआ क्या, एक बुजुर्ग थे हजरत हातिम असम, बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, इनका तवक्कुल बहुत कमाल का था। एक रात अपने रुफका से, अपने दोस्तों से बात कर रहे थे, तो हज का जिक्र निकल आया, तो उनके दिल में भी हरमैन तैयबैन जाने की तड़प बढ़ गई, तो घर तशरीफ़ लाए और अहले खाना से कहते हैं अगर मुझे इजाज़त दो तो मैं हरमैन तैयबैन चला जाऊं। तो बीवी बच्चों ने कहा कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, फाके चल रहे हैं और आप मक्के मदीने जाने की बात कर रहे हैं, और आप चले गए तो हमारा पीछे क्या हाल होगा, हैं? भरोसा अल्लाह पर नहीं है, असबाब पर, चीज़ों पर। तो वह एक छोटी बच्ची थी, वो क्या कहती है, अगर तुम लोग इजाजत दे दो तुम्हारा क्या जाएगा, ये जहां जाना चाहते जाने दो, ये रिस्क देने वाले थोड़ी हैं, हैं? कहते ये राजिक थोड़ी हैं, रिस्क मिलने का वसीला है। जब घर के दीगर अफराद ने बच्ची का तवक्कुल देखा तो कहते बच्ची ठीक तो कह रही है, अल्लाह के घर ही जा रहे हैं, अब चले जाएं। हजरत को इजाजत दे दी घर वालों ने, आप हज पर रवाना हो गए। अब सुबह हुई तो आपके जैसे ही हज की खबर फैली तो आपके पड़ोसी आ गए, कहिए आपने क्या किया, उस बच्ची को बुरा भला कहने लगे कि आपको इजाजत नहीं देनी चाहिए थी, आपके अब्बू चले गए, आपके खाने पीने के मसाइल हैं। अच्छा, पहले ऐसा तो नहीं था कि 15-20 दिन 40 दिन का हज था, कई महीनों का ट्रेवल होता था, जाते थे आते थे, ऑलमोस्ट 4 to 6 months, हो सकता है साल का सफर हो। तो अब बच्ची को ये कहने लगे कि तुम्हें इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। आए हाय, जब उस बच्ची ने यह सुना ना तो आसमान की तरफ सर उठाया और कहने लगी कि ऐ मेरे मालिक, अब मुझे इन लोगों के सामने रुसवा ना करना, तेरे भरोसे मैंने कहा था, अब तूने रुसवा नहीं करना। अच्छा, हुआ ये कि उस शहर का जो हाकिम था, जो समझ ले बादशाह था या गवर्नर कह लें, वो शहर के गश्त पर निकला और ट्रैवल करते करते उसे प्यास लगी, तो इसी हजरत हातिम असम के घर के दरवाजे पर आकर दरवाजा बजाया जाता है, क्या गवर्नर साहब आए हैं, जरा पानी पिला दें, प्यास लगी है। उनकी जौजा कहती, या अल्लाह, हम वो लोग हैं जिनके अपने खाने पीने के प्रॉब्लम्स हैं और हमारे दरवाजे पर शहर का हाकिम आकर पानी मांग रहा है, ए अल्लाह तेरी कुदरत। पानी पिलाया तो किसी पड़ोसी ने आकर कहा कि ये बड़े गरीब लोग हैं और इनके वालिद साहब हज पे चले गए, हज़रत हातिम असम हैं और इनके घर में तो फाके चल रहे हैं। तो बादशाह ने कहा कि हम इन्होंने हम पर मेहरबानी की, हमें पानी पिलाया, इनको ऐसे खाली हाथ तो नहीं छोड़ना चाहिए। उसने अपने जो पेटी बांधते थे उस ज़माने में, अपनी पेटी उतारी और उनके घर में डाल दी, और अपने सारे सिपाहियों से कहा सब अपनी अपनी पेटी डाल दो। सब ने पेटी खोली और डाल दी, बाद में वो पेटी के बदले पैसे आए और वो मालदार हो गए, इतने पैसे हो गए, सुभान अल्लाह। अब क्या हुआ, जब ये सब कुछ आ गया तो अब वो बच्ची जारों के तार रोने लगी। लोग कहने लगे अब तो मसला हल हो गया, अल्लाह ने भरोसा, तुम्हारा भरोसा था, अल्लाह ने इतनी मेहरबानी की, इतने पैसे घर में आ गए। तो बच्ची के जुमले सुनिएगा, वो कहती है कि मैं तो इसलिए रो रही हूं कि हमने कल रात भूख के आलम में गुजारी, जब मखलूक ने हमारे हाल पर नजर इनायत की तो फकर गुरबत से हमें गनी कर दिया, फकर फाका खत्म, वी आर नाउ रिच। वो कहती है जब अल्लाह करीम हमारे हाल पर नजर फरमाएगा, तो लम्हा भर के लिए भी हमें किसी का मोहताज ना रहने देगा। फिर बच्ची ने बारगाह खुदाबंदी में दुआ मांगी, ए अल्लाह हमारे वालिद पर नजर रहमत फरमा और उनके लिए आसानी फरमा दे, वो तेरी राह में रवाना हुए हैं। क्या कमाल की बच्ची है। और जब उस बच्ची ने ये दुआ की तो फिर हुआ क्या, सुभान अल्लाह, कि दूसरी तरफ सैयदना हातिम असम जब हज के काफिले के लिए रवाना हुए तो रास्ते में अमीर काफिला शदीद बीमार हो गया। लोगों ने उसके लिए डॉक्टर को तलाश किया तो डॉक्टर नहीं मिला। अमीर काफिला ने पूछा कोई हमारे साथ नेक बंदा है, अल्लाह का कोई नेक बंदा? लोगों ने कहा हाँ, हमारे साथ तो हज़रत हातिम असम है। अमीर के पास आप गए, अमीर के लिए दुआ की, उसी वक्त अल्लाह पाक ने वो तकलीफ़ अमीर की दूर कर दी। तो अमीर ने हुक्म दिया कि इनके लिए खाने पीने और सवारी का इंतज़ाम कर दिया जाए। आप रहमतुल्लाह ताला ने अपने बच्चों के लिए परेशान थे जिनको पीछे छोड़कर आए हैं, इसी हालत में आपकी आंख लग गई। ख्वाब में किसी ने कहा आतिम जो हमारे साथ अपना मामला दुरुस्त कर लेता है हम भी उसके साथ अपना मामला दुरुस्त कर लेते हैं। आपको अहलो अयाल के साथ जो पीछे मदद हुई ना वो भी ख्वाब में बता दिया गया। हज के बाद जब वापस तशरीफ लाए तो बच्ची गले लगकर रोने लगी। इस मौके पर वहां मौजूद बच्चों ने बड़ों से कहा अल्लाह पाक उसकी तरफ नजर नहीं फरमाता जो उम्र के एतबार से बड़ा हो, बल्कि उसकी नजर रहमत तो उसकी तरफ मुतवज्जे होती है जो अल्लाह करीम की ज्यादा पहचान रखता है, ज्यादा मारिफत रखता है। तो आए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखिए अल्लाह पर भरोसा हो तो बिगड़े काम संवर जाते हैं। ये आजकल लोग जो हराम काम की तरफ जा रहे हैं ना, कोई सूद का काम कर रहा है, कोई रिश्वत का काम कर रहा है, कोई जनाब कहता है नहीं यार झूठ बोले बगैर कारोबार कैसे होगा, ये एक्चुअली प्रॉब्लम ये तवक्कुल की कमी है। आज हराम रोजी का जो बाजार गर्म है ना, अच्छा पता सबको है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, पता है मैं मिलावट कर रहा हूँ, पता है मैं धोखा देकर पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन जब उससे पूछो क्यों कर रहे हो तो यार क्या करें, घर का खर्चा कैसे चलेगा, मार्केट में सारे ही झूठ बोलते हैं, मैं नहीं बोलूंगा तो मेरा काल माल कैसे बिकेगा। मुझे बताइए फिर तवक्कुल किधर गया, फिर भरोसा किधर गया? यानी आप ये समझते कि गलत कर ही पैसे मिलेंगे, ये भूल है हमारी। याद रखिए हराम रोजी के करीब भी ना जाएं, ये वो गलती है जो हमारे यहां बहुत बड़ी तादाद में लोग कर रहे हैं। आप यकीन करें, आप अल्लाह पर भरोसा रखें और एक नीयत कर लें आज कुछ भी हो जाए मैं हराम रोजी के करीब भी नहीं जाऊंगा। फिर देखिए आप, आपके मसले कैसे हल होते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारे मसले हल नहीं हो रहे, हमें सुकून नहीं मिलता है, हमारी टेंशनें दूर नहीं होती हैं। प्लीज चेक कीजिए रोजी हलाल है कि नहीं है। एक बार हजरत मूसा अला नबीना वालिस्सलाम ने एक शख्स को देखा कि वो जारो कितार रो रहा है, हाथ उठा उठा कर दुआएं कर रहा है, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। हजरत मूसा तो अल्लाह से बात करते थे, आपने अल्लाह से अर्ज की मौला ये इतनी दुआएं कर रहा है, इसकी दुआ सुन ले, इसकी पुकार सुन ले, इसका मसला हल कर दे। अल्लाह ने फरमाया ए मूसा ये इतना रोए कि रोते रोते मर जाए, ये इतने हाथ बुलंद करे कि इसके हाथ आसमान तक पहुंच जाएं, तब भी इसकी दुआ कबूल नहीं होनी है। हजरत मूसा ने कहा या अल्लाह वजह क्या है? फरमाया ये हराम खाता है, हराम पहनता है और इसके घर में हराम माल है। खुदारा इससे निकल आइए, हिम्मत कीजिए एक बार, आप भरोसा कीजिए अल्लाह पर। मुझे अंदाजा है इस तरह के बयान होते हैं ना तो डबल माइंडेड हो जाता है बंदा, यार बात ठीक हो रही है मगर पूरा एम्पायर खड़ा हुआ है, पूरी फैक्ट्री चल रही है, पूरा बिजनेस ही सूद पे चल रहा है, झूठ पे चल रहा है, बहुत सारी गलतियां हैं, कैसे निकलूं? अल्लाह से मदद मांगनी है, वो करीम है, वो जरूर मदद फरमाएगा। एक और बात सुनिए, ये बाज़ औक़ात फैमिली प्रेशर की वजह से भी लोग हराम की तरफ जाते हैं, डिमांड ही खत्म नहीं होती ना। एक और हदीस पाक सुनिए, अल्लाह करे मेरी बहनें सुन रही हो, मेरी माएं मेरी बच्चियां सुन रही हैं, वो भी इस हदीस को सुने। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा कि मोमिन को अपना दीन बचाने के लिए एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ और एक गार से दूसरे गार की तरफ भागना पड़ेगा। उस वक्त रोजी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नाराजगी के जरिए ही हासिल की जाएगी, यानी तरीका बड़ा मुश्किल हो जाएगा हलाल कमाने का। फिर जब ऐसा जमाना आएगा तो आदमी अपने बीवी बच्चों के हाथों हलाक होगा। अच्छा बीवी बच्चे नहीं होंगे तो वालिदैन के हाथों हलाक होगा, अगर वालिदैन ना हुए तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के हाथों हलाक होगा। साहबा इकराम ने अर्ज की हुजूर वो कैसे, यानी बंदा अपने बीवी बच्चों पड़ोसियों माँ बाप के हाथों कैसे हलाक होगा? अब सुनिए अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते वो इसे इसकी तंग दस्ती पर आर दिलाएंगे, इसकी गुर्बत पर इसे शर्म दिलाएंगे और तो अपने आप को हलाकत में डालने वाले कामों में मसरूफ कर देगा और इन्हीं के हाथों हलाक होगा। यही कहते हैं ना घर वाले, तुमने कमाया ही क्या, अभी तक मोटरसाइकिल पर हो हैं, अभी तक जनाब तुमने घर का फर्नीचर चेंज नहीं किया, शादी हो रही है तुमने सोने का जेवर नहीं बनाया। घर वालों का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, पड़ोसियों के ताने, एक वक्त आएगा कि बंदा हराम कामों की तरफ जाएगा और फिर अल्लाह को नाराज करेगा और उन्हीं के हाथों हलाक हो जाएगा। यहां मैं आप सबको एक बात अर्ज करना चाहता हूं, प्लीज एक बात याद कर लो, पैसा ज्यादा होना कमाल नहीं है, अच्छा माल होना कमाल है। हमें होता पता है क्या है कि आप बाज़ औक़ात किसी अमीर को देखते हैं, आपको लगता है यार इतनी गाड़ियां, इतने बंगले, जनाब मजे में तो ये है, बरकत इसमें है। नहीं, एक जुमला आज याद कर लें, सब याद कर लें, बरकत क्वांटिटी में नहीं है, बरकत क्वालिटी में है। किसी के पास अरबों रुपए हैं, हराम के हैं, सुकून नहीं है, सो नहीं पा रहा, बच्चे बीमार, नाफरमान, गुनाहगार, वो पैसे किस काम के हैं? और किसी के पास थोड़े हैं मगर हलाल के हैं, सुकून की नींद आती है, बड़ी बीमारी से अल्लाह ने बचाया, बच्चे और फैमिली नेकुकार हैं। बताओ कौन ज्यादा सुकून में है, कौन बरकत वाला है? प्लीज हलाल की तरफ तवज्जो रखें। हमारा सबका एक ही मसला है कि अगर हमारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएं, हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। तो दुआएं कैसे कबूल होंगी? एक सवाल किया गया प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में, हुजूर, और सवाल करने वाले अशराए मुबशरा में से सहाबी हैं, हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु। क्वेश्चन कितना प्यारा है, कहते हुजूर मैं मुस्तजाबुद दावात बनना चाहता हूं। मुस्तजाबुद दावात किसको कहते हैं? जो दुआ मांगे वो दुआ कबूल हो जाए। कौन कौन बनना चाहता है हम में से? आए हाय, बस आप इसकी 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 खूबसूरती समझें। अगर मैं और आप मुस्तजाबुद दावात बन गए, सारे प्रॉब्लम सॉल्व ना, वॉट एवर प्रॉब्लम एंड क्लैमिटी कम टूवर्ड्स मी, मैं दुआ करूंगा, खत्म हो जाएगी, ऐसा ही है ना। अब नबी पाक अली सलाम ने इस ब्यूटीफुल क्वेश्चन का आंसर कोई बहुत बड़ा नहीं दिया, अल्लाह के नबी सलाम ने वन लाइनर आंसर दिया। आका ने फरमाया, ए साद अपनी गिजा पाकीजा कर लो तो मुस्तजाबुद दावात बन जाओगे। हाय हाय, व्हाट अ ब्यूटीफुल वे। बस हमारा निवाला पाकीजा हो, हमारा रिस्क पाकीजा हो, छोड़ दो मल्टीप्लिकेशन को, यार वो आगे बढ़ गया, मेरा तो फिर 2000 गज का बंगला कैसे बनेगा, तो V8 किधर से लूंगा, तो जनाब इतना ट्रेवल कैसे होगा, ये सब छोड़ दें आप हिम्मत रखिए। और मैं आपको एक और जुमला आज बता देता हूं, जिस शख्स ने हराम को छोड़ा है ना, वो नीचे नहीं गया है। दोबारा शुरू में मैंने क्या कहा था, एक मेरा और आपका कैलकुलेटर है, एक रहमत का कैलकुलेटर है। आप मुझे एक बात का जवाब दें, मैंने कई बार ये वाकया बयान किया, चलो मैं उसको शॉर्ट कर देता हूं। एक मुबल्लिग को एक बंदा मिला और कहता है, जनाब मैं आपका बयान सुना और मुझे जहन बन गया हराम छोड़ने का, यूरोप की बात है। वो कहते हैं मेरे स्टोर पे शराब बिकती है, और भी सामान बेचता हूं लेकिन शराब भी बेचता हूं, मैं शराब बेचना छोड़ूंगा पैसे ही पूरे नहीं होंगे, किराया ही नहीं निकलेगा, बच्चों का क्या होगा। तो उस मुबल्लिग ने उस बंदे को यह कहा, जो मैं आप सबको और मेरे व्यूवर्स को भी कहना चाहता हूं, कि यार एक बात बताओ, तुम हराम कमा रहे हो? कहता है हाँ। अल्लाह दे रहा है, रोजी मिल रही है? कहा मिल रही है। तुम हलाल कमाओगे तो क्या वो रोजी बंद कर देगा? मुझे बताए ना, रिस्क देने वाला कौन है, राजिक कौन है? मैं अल्लाह की नाफरमानी करूं वो दे रहा है, और मुझे डर यह है कि मैं उसको राजी करूंगा और वो बंद कर देगा। या तो रोजी देने वाला कोई और होता तो समझ आती बात कि भाई इबादत अल्लाह की करूंगा, वो बंदा नाराज हो जाएगा। जब रोजी देने वाला रब है, मेरा ईमान है, अकीदा है, इसका मतलब या तो वो ईमान कमजोर है, और अगर वो तवक्कुल मिल गया तो ये डेफिनेटली होगा कि आप अल्लाह की नाराजी छोड़े, आपको अंदाजा नहीं होगा कहां से रोजी आना शुरू हो जाएगी। हुआ क्या पता है, सुने, ये मैं आपको प्रैक्टिकल वाक्य बता रहा हूं, 1 या 1.5 साल बाद उसी मुबल्लिक की उसी नौजवान से फिर यूरोप में मुलाकात हुई। वो नौजवान ढूंढता हुआ आया, कहता आप, मैं याद हूं आपको? कहते यार कुछ याद तो आ रहा है, आपसे मुलाकात हुई थी। कहा मैं वही हूं जिसने आपसे वादा किया था मैं शराब नहीं बेचूंगा, आपने कहा था कि अल्लाह तुम्हारी रोजी में बरकत देगा, ऐसा ही हुआ है, मैंने शराब बेचना छोड़ दी, पता नहीं किधर से रोजी आ रही है, अल्लाह ने बरकत डाल दी है। ये एक टेस्ट होता है, ये एक प्लान, आपको पहले लगेगा नहीं होगा, और बाज़ औक़ात कुछ दिनों तक आजमाया भी जाएगा। आप बोले यार मौलाना साहब ने कहा था कि भाई हराम छोड़ दो पैसे ज्यादा हो जाएंगे, मैं तो रोज की रिश्वत 10,000 रुपए लेता था, मैंने छोड़ दी, आज तो 11,000 रुपए नहीं आए। ऐसा नहीं होगा, कुछ दिन आजमाया जाएगा, हो सकता है अल्लाह थोड़ी में ही तुम्हें सुकून अता कर दे, तुम्हें बरकत डाल दे, या फिर तुम्हें अपने गैब के खजानों से अता फरमाए। अब मैं आखिर एक आयत इस बयान को एंड करते हुए, एक ऐसी आयत है ऐसा दिलासा देती है और इतनी प्रैक्टिकल कुरान की आयत है, यकीन करें जब फंस जाओ ना इस आयत को, अल्लाह करे आप याद कर लें। मैं रेफरेंस दे देता हूं, आप ऐसा करें कि रेफरेंस नोट कर लें, अपने मोबाइल में नोट कर लें, फिर खुद कुरान पाक से निकाल लीजिएगा। वन ऑफ माय फेवरेट आयत ऑफ कुरान पाक, आए हाय हाय, क्या क्या दिलासा देती है। पारा नंबर 28 है, सूरह अत-तलाक है, आयत नंबर 2 और 3, ठीक है। ये आयत आप इसको याद कर लो, इसका तर्जमा याद कर लो, जब भी टेंशन में हो ना आप ये आयत दोहरा लो। अब आयत सुने क्या है, पूरा फॉर्मूला अल्लाह ने कुरान में दे दिया है। अल्लाह फरमाता है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए नजात का रास्ता निकालेगा, उसको एग्जिट डोर मिलेगा। फिर क्या फरमाया, वयरज़ुकहु मिन हैथु ला यहतसिब, अल्लाह उधर से रोजी देगा जिधर तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। अच्छा, अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली करते हैं, ठीक है। ये सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग बैठे हैं, मोर देन 50 ईयर्स जितने बैठे हैं ना, मैंने कभी आपसे बात नहीं की होगी इस मौजू पर, मगर आज मैं बहुत अजीब सा दावा करने जा रहा हूं, जितने या 50 साल से बड़ी उम्र के बैठे या 45 से प्लस है ना, अब मैं जो जुमला कहने जा रहा हूं आप सबसे पूछ लीजिएगा, आपकी जिंदगी में एक बार कम अज कम, इससे ज्यादा भी हो सकता है, एक बार ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपको लगा होगा यार बस अब खत्म, फंस गए भाई, बड़ा मामला आ गया है, अब नहीं निकल सकता, इधर से निकलूंगा कैसे। और आप ऐसे निकले होगे कि आज जब आप सोचते हैं तो आप हैरान है यार मैं उस प्रॉब्लम से निकला कैसे। कैलकुलेटर कहता था कर्जा बहुत हो गया है, नुकसान बड़ा हो गया है, पैसे फंस गए कहीं, कोई पैसों का मामला हुआ होगा, कोई बीमारी का मामला हुआ होगा, कोई फैमिली प्रॉब्लम हुआ होगा, मगर आज सोचता हूं तो हैरान हो जाता हूं, ऐसा हुआ है सबके, कई लोगों के सर हिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए नजात का रास्ता निकालता है। وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, अल्लाह उधर से रोजी देता है जिधर तुम्हारा गुमान भी नहीं होता। जो लोग इस भरोसे से हट जाते ना, देखिए व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस, अगर हम तवक्कुल को छोड़ते तो उसके पता है प्रॉब्लम क्या होता है। मैंने मेरे बयान का टॉपिक आज हमने इसीलिए रखा, तवक्कुल जरूरी क्यों है। आज डिप्रेशन बढ़ रहा है, आज सुसाइड्स बढ़ रहे हैं, आज लोग जनाब अल्लाह से मायूसी की बातें कर रहे हैं, क्यों? तवक्कुल खत्म हो गया। तवक्कुल एक्चुअली एंटी डिप्रेशन है। अगर आप भरोसा अल्लाह पर कर लेना, दुनिया की कोई भी चीज सामने आ जाए, हमें किसी ने आग में नहीं डाला है, हजरत इब्राहिम को तो आग में डाला ना है, ऐसे बहुत सारे बदर का वाक्य हमने सुना, 313 लोगों को क्या था जज्बा, तवक्कुल था कि अल्लाह के नबी साथ हैं, हम राजी हैं, और अल्लाह ने फरिश्ते भेज दिए। तो एक्चुअली ये डिप्रेशन से निकलना है, सुसाइड के ख्याल दिमाग में ना आए, तो हमें स्ट्रांगली अल्लाह पर बिलीव करना होगा। ये आयत बता रही है वयरज़ुकु मिन हैथु ला यहतसिब, अल्लाह उधर से रोजी देगा इधर तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। फिर अल्लाह आगे क्या फरमाता है, वमन यतवक्कल अलल्लाही फहुवा हस्बू, जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी है। एक्चुअली दिस इज द मैसेज ऑफ कुरान, अल्लाह पर भरोसा नहीं है तो आप परेशान ही रहेंगे, और अल्लाह पर भरोसा कर लें फिर देखें आप कैसे निकलते हैं। हम दुनिया वालों को अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। मैं आज आखिर में आपको एक बात बताना चाहता हूं, ना बताया करो दुनिया वालों को अपने मसाइल, हाँ मत बात किया करो, कोई कुछ करता भी नहीं है और कर सकता भी नहीं है, मेरी बीमारी कौन दूर कर सकता है, मेरा प्रॉब्लम, क्योंकि सारे मसाइल हल होने अल्लाह की बारगाह से हैं। दुनिया वालों से हम बात करते हैं ना, लोग इंजॉय करते हैं, लोग हमारी बात पर मजे ले रहे होते हैं, हमारे सामने नहीं कहते, हमारे बाद लोगों को बताते हैं, आया था मेरे पास, इसका फलां मसला है, इसका फलां प्रॉब्लम है, हाँ हाँ बड़ी बड़ी बातें करता है, ये वाले प्रॉब्लम में, यानी हमारी प्रॉब्लम से दुनिया वाले इंजॉय कर रहे होते हैं। क्यों बताते हो दुनिया वालों को भाई, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। वो शायर कहते हैं ना, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है, दर्द दिल की दवा। और क्यों हो मायूस ए मरीजों तुम, क्यों हो मायूस ए मरीजों तुम, आओ दारो शिफा मदीना है। तो हमें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ नजर रखनी है, हमने दुनिया वालों को नहीं बताना है। तो हमें अल्लाह पर जब भरोसा होगा ना, मैं आपको मशवरा देता हूं, आप अल्लाह से बातें किया करो। मुझे एक बात बताएं, कभी रात में ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि आप बड़े दुखी होंगे, टेंशन में नींद नहीं आई होगी, बचपन में खास तौर पे या जवानी में, और आंखों में आंसू होंगे, और आप अपनी वालदा के पास गए होंगे हैं नींद से बेदार होकर, या नींद नहीं आ रही, और माँ को कहा होगा, माँ मैं बहुत परेशान हूँ, फंस गया हूँ माँ, बीमार हूँ या कर्जे में हूँ, वॉट एवर आपका प्रॉब्लम था, सच बताओ माँ ने क्या किया था, करवट बदल कर सो गई थी कि बेटा तू जान तेरा काम जाने, या माँ भी बेकरार हो गई थी, माँ भी उठकर बैठ गई, माँ ने सीने लगाया, अल्लाह से दुआएं करना शुरू कर दी। मुझे एक बात बताओ, मैं बिस्तर से उठकर आंखों में आंसू लिए जब जब माँ के पास गया, उस माँ ने सीने लगाया, कभी बिस्तर से उठकर आंखों में आंसू लेकर अल्लाह के पास जाओ तो सही। मेरा रब तो वो है जिसने मेरी माँ के दिल में ममता भी उसी ने डाली है, वो कई माओं से ज्यादा चाहने वाला है। हमारा प्रॉब्लम ये, बात ही नहीं करते अल्लाह से, हम सबसे बात करते हैं, आप इसको ट्राई करके देख लें और अल्लाह से अपनी मादरी जबान में जिस तरह बात करनी है बात करें ना। दुनिया में किसी बड़े आदमी गवर्नर वजीर आजम सदर से बात करनी अव्वल तो टाइम नहीं मिलता, नंबर नहीं मिलता, मिल जाए तो सेक्रेटरी बोलता है साहब बहुत बिजी हैं, 15 दिन बाद मौका मिलेगा। अच्छा फिर मुलाकात 5 मिनट की होगी, कितनी कंडीशन है यार। मैं तो कह रहा हूं खुदा से बात करनी है, अहकमुल हाकिमीन से बात करनी है। कैसे होगी? पूछो मौला अली से। कहते हैं जब मेरा जी चाहता है मेरा रब मुझसे बात करे मैं कुरान पढ़ने लग जाता हूं, और जब जी चाहता है मैं अल्लाह से बात करूं मैं दुआ करने लग जाता हूं। क्या टू वे कॉन्वर्जेशन है यार। नो बडी बिटवीन मी एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला, नो सेक्रेटरी, नो टाइम लिमिट, जितनी बात करनी है करो ना। हाथ उठाओ अकेले में, कभी कभी तहज्जुद में बैठा करो, ये मस्जिद में भी आकर ना कोना पकड़ लिया करें, कभी कभी फौरन चले जाते हैं लोग, और अल्लाह से बातें करें। ए अल्लाह परेशान हूँ, ए अल्लाह बीमार हूँ, फंस गया हूँ मौला, कारोबार ठप हो गया है, रोजी के मसाइल हैं, बीमारी के, जो तो आपके दिल में अल्लाह से बात करो। आप यकीन करो वो देने वाला है, वो खुद फरमाता है उदउनी अस्तजिब लकुम, मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। जिस दिन अल्लाह पर आपका भरोसा बढ़ गया ना आपको दुआ का लुत्फ आ जाएगा। आप अल्लाह से, पता है एक और बड़ी प्यारी कुरान पाक की आयत का जुज है, वो क्या है? वह उफव्विदु अम्री इलल्लाह, मैं अपने सारे काम अपने रब के सुपुर्द करता हूँ। हम कहते हैं ना यार मैं आज गया था भाई फलां जगह फाइल जमा करा के आया हूँ, मसला हल हो जाएगा, बहुत बड़ी शख्सियत को देकर आया हूँ फाइल। जब आप ये पढ़ोगे ना तो दिल से आवाज़ आएगी फाइल जमा करा दी अल्लाह की बारगाह में। वह उफव्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, अल्लाह अपने बंदों को देख रहा है। तो ये दुआ में शामिल करे इस वजीफे को, अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द करना सीखो। अब एक वसवसा, यार मौलाना साहब कह तो रहे हैं दुआ तो करता हूँ मसला हल ही नहीं होता है, मक्के जाकर भी दुआ की, मदीने जाकर भी दुआ की, फलां मजार शरीफ में भी की, फलां बुजुर्ग से भी करवाई, 10 साल से दुआ कर रहा हूँ मसला तो हल ही नहीं हो रहा। आप कहते हैं अल्लाह से मांगो अल्लाह देगा। अब शैतान है ना कोई तो दिमाग में बात डालेगा। पहले तो अल्लाह से जब मोहब्बत कर लोगे ना तो हज़रत इब्राहिम ने क्या कहा था, मेरा रब देख रहा है ना, जे सोना मेरे दुख विच राजी, मैं सुख नु चुल्ले पावा हूँ, अल्लाह ने अगर मेरे नसीब में आजमाइश लिखी है मैं इस पर भी राजी हूँ, क्योंकि बहुत कुछ दिया है ना। हैं हजरत राबिया बसरिया रदी अल्लाह तआला का एक कॉल याद आ गया, एक बंदा सर पे पट्टी बांध के जा रहा था। आपने देखा सर पे पट्टी बांधी, क्यों बांधी है पट्टी? का सर में दर्द है इसलिए पट्टी बांधी है। आपने फरमाया कभी सेहत की पट्टी बांधी थी? ये जुमला बहुत गहरा है, समझो इसको। यानी ये आप अल्लाह की वलियां हैं ना, ये अल्लाह वाले ना इनके नजदीक ये भी शिकायत है कि सारे शहर को बता रहे हो कि अल्लाह ने आज दर्द दिया है। एक दिन दर्द दिया तो तुम पट्टी बांध के घूम रहे हो, 29 दिन सेहत दी तो लोगों को बताया। अल्लाह ने कितना दिया है वो कभी उसको आपने काउंट किया? कभी थोड़ी देर के लिए धूप में खड़ा कर दिया तो आप वावेरा करना शुरू कर देते हैं? सारी जिंदगी छांव में रखा, कभी कभी प्रॉब्लम आती है, कभी कभी बीमारी आती है, बाकी जिंदगी तो ऐश की है। तो अल्लाह से मोहब्बत करना सीखो। तो मैं ये कह रहा था वसवसा क्या है कि यार मांगी जा रहा हूं काम तो होता नहीं है। अब मैं उस वसवसे की काट आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। आपका छोटा बेटा हो, बच्चा हो या भाई हो, उसका गला खराब हो जाए, बुखार हो जाए, खांसी हो जाए, और वो कहे अब्बू मैंने शरबत पीना है ठंडा और आज आइसक्रीम भी खानी है। हाँ भाई बताएं खिलाएंगे? जवाब दें नहीं खिलाए। अच्छा रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, नहीं मैंने खानी है आज, मैं खा के रहूंगा, अब खिला देंगे? अच्छा अब भी नहीं खिलाएंगे, रो रहा है फिर भी नहीं खिलाएंगे? नहीं खिलाएंगे। अच्छा अब आपका एक दोस्त साथ बैठा है, कहेगा यार कितने जालिम अब्बू हो, बच्चा रो रहा है खिला दो आइसक्रीम, क्या हो गया? आप क्या रिप्लाई देंगे? मैं वालिद हूं मुझे पता है कब मेरे बच्चे को क्या देना है। यही कहते हैं ना, मैं वालिद हूं मुझे मालूम है मेरे बच्चे को कब क्या देना है। अब जरा दिल से मेरा जुमला सुनना, तुम वालिद हो तुम्हें पता है बच्चे को कब क्या देना है, मेरे मालिक को नहीं पता मुझे कब क्या देना है? मैं रो रहा हूं, मैं गिड़गिड़ा रहा हूं, मैं इधर जा रहा हूं, मैं उधर जा रहा हूं, मैं सबसे दुआएं करवा रहा हूं, नहीं हो रहा मेरा मसला हल। अरे मान लो ना ये मेरे लिए बेहतर है, मेरा रब नहीं कर रहा ये मेरे लिए बेहतर है, मेरे माँ बाप मेरे लिए बुरा नहीं सोचते, तो वो खालिक अगर उसके उसको यही मंजूर है तो यही मेरे लिए बेहतर होगा। काश ये जिस दिन ये तवक्कुल का लेवल मिल गया आपको, कभी किसी प्रॉब्लम में टेंशन नहीं होगी, काम हो गया तब भी राजी रहोगे, नहीं हुआ जब भी राजी रहोगे कि मेरे रब ने नहीं किया ना, यही मेरे लिए मैं नहीं समझ पा रहा, मुझे नहीं आ, बच्चों को कहां समझ आती है? वो कहते अब्बू अच्छे नहीं है, अम्मी अच्छी नहीं है, मुझे नहीं दे रही चीज। अब्बू अम्मी को पता है क्यों रोक रहे हैं? अरे मेरी आपकी अक्ल इतनी, हमें ये समझ है कि बच्चे को कब क्या देना है क्या नहीं देना। जिसने कायनात बनाई उसे नहीं पता मुझे कब क्या देना है क्या नहीं देना।
कुछ लोगों को माल उलमा कहते इसलिए नहीं दिया जाता कि वो अमीर हो जाएंगे तो नाफरमान हो जाएंगे, ईमान से हाथ धो बैठेंगे। कुछ लोगों को गरीब इसलिए नहीं बनाया जाता कि वो गरीब होंगे तो फकर व फाका की वजह से इस्लाम से चले जाएंगे। अल्लाह की देन है, अल्लाह की मर्जी है। व तु इज्जु मन तशा व तु जिल्लु मन तशा, मैं और आप होते कौन है एतराज करने वाले कि उसको अमीर क्यों बनाया, इसको गरीब क्यों बनाया, इसको लंबा क्यों बनाया, इसको छोटा क्यों बनाया। अरे रब की मर्जी, वो खालिक और मालिक है, हम बंदे हैं, हमारा काम मानना है, हमें उससे मोहब्बत करना है, हमें उस पर भरोसा करना है। खुदा की कसम अगर आज मैं और आप तवक्कुल को पालें, जिंदगी गुजारना आसान हो जाएगा। तो आज के बयान में ये पैगाम लेकर जाओ कि मैंने सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करनी है तो अपने मालिक से करनी है, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा अदाएं मुझे दी हैं। अरे मैं जब पैदा नहीं हुआ था, जब से मुझे नवाज रहा है, मैं मां के पेट में था, उसने मेरे हाथ पैर सलामत रखे, मुझे लंगड़ा पैदा नहीं किया, मुझे बगैर हाथ के पैदा नहीं किया। कि बच्चे नाबीना पैदा नहीं होते? क्या दिल के सुराख वाले बच्चे पैदा नहीं होते? मेरे रब ने मुझे पूरा पैदा फरमाया। और सुनो सुनो, किस दौर में पैदा किया? मैं 5000 साल पहले भी पैदा हो सकता था, मैं किसी और नबी का भी उम्मती बन सकता था, मेरे रब ने बिन मांगे मुझे मेरे नबी का उम्मती बना दिया। ये उस उम्मत में बनाया जिस उम्मत में दाखिल होने के लिए अंबिया तमन्ना किया करते हैं या रसूल अल्लाह। अब जरा सोचें कि किस कदर हम पर मेहरबानी है। ये हमने मांगी थी, मैंने और आपने क्या पैदा होने से पहले दुआ की थी, या अल्लाह सही सलामत बनाना, अंधा मत बनाना, बहरा मत बनाना, गूंगा मत बनाना, ए अल्लाह मुझे जो है वो नबी पाक का उम्मती बनाना। नोबडी आस्क, हमें तो पता ही नहीं था। हम किसी गैर मुस्लिम माँ बाप के घर में भी पैदा हो सकते थे, नहीं होते बच्चे पैदा? क्रिश्चियंस के घर में, ज्यूज के घर में, हिंदुओं के घर में? कितनी मेहरबानी की मेरे मौला ने मुझे मुसलमान माँ बाप दे दिए। मेरे कानों ने सबसे पहली आवाज अजान की सुनी, अल्लाह की मेहरबानी नहीं है? कोई भजन सुनता है, कोई पता नहीं किधर क्या क्या घंटे सुनता है। मेरे अल्लाह ने मुझे उस घर में पैदा किया, मेरे माँ बाप ने सबसे पहले मेरे कान में अजान सुनाई। इस मेहरबानी का शुक्रिया अदा नहीं करोगे क्या? इस पर इत्मीनान नहीं? कितनी मेहरबानियां गिनवाऊं? जरा थोड़ी देर के लिए सारे मेरे भाई आंखें बंद करें, आंखें बंद करें जल्दी से, अब खोल दें। क्या नजर आ रहा था? कुछ भी नहीं, अंधेरा नजर आ रहा था ना। ये थोड़ी देर सेकंड जो अंधेरा आपके सामने था ना, नाबीना की जिंदगी में सारी जिंदगी अंधेरा होता है। मैं और आप सारी जिंदगी सजदा करें ना तो कम है कि अल्लाह ने आंखें दी हैं। कभी सोचो वो नाबीना जिंदगी कैसे गुजारता है, ना बच्चों को देख सकता है, ना फैमिली को देख सकता है। ईद के दिनों में बच्चे आते होंगे, अब्बू देखो कैसे कपड़े पहने हैं, वो बेचारा अपने बच्चों को भी नहीं देख सकता। हमने कब शुक्र अदा किया यार, अल्लाह तूने आंखें दी, सलामत दी, अंधा नहीं बनाया। ये तो एक नेमत की बात कर रहा हूं, कितनी नेमतें गिनवाऊं? ना शुक्री, शिकवे, कंप्लेन, ऑलवेज कंप्लेन। मोहब्बत करो अपने रब से, अरे बहुत दिया है बहुत। और सच्ची बात ये, जितना गुनाहगार हूं ना, जितना बड़ा नाफरमानू, नाफरमानों को कौन देता है? आप जॉब से फायर कर देते हो, आपकी बात ना माने एम्प्लॉय फारिग, बच्चा बे नाफरमान घर से निकाल देते हो। मैं तो कितना बड़ा नाफरमान हूं, मगर रोज दिए जा रहा है, रोज दिए जा रहा है, कोई नेमत वापस नहीं ले रहा। और हम अल्लाह से ही शिकवा करते हैं, अल्लाह पर ही भरोसा नहीं करते। आज सीख के जाना है, आज बदल के जाना है, आज अपने रब से मोहब्बत का दर्स लेके जाना है। मुझे किसी से इतना प्यार नहीं करना है जितना मुझे अपने रब से प्यार करना है। वो बड़ा करीम है, यकीन करो, जब रब से बंदा मोहब्बत कर लेता है ना, जब अल्लाह पर भरोसा कर लेता है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बु, कुरान में उसका ऐलान है, अल्लाह उसके लिए काफी है। जो अल्लाह पर भरोसा कर ले, अल्लाह उसके लिए काफी है। अल्लाह हमें अपना भरोसा अता कर दे, हम उसी से मांगते हैं, अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत अता कर दे, हमें अपना यकीन अता कर दे, तेरे फैसलों पर इत्मीनान अता कर दे। अल्लाह हम कमजोर हैं, हिल जाते हैं, हमारा भरोसा हिल जाता है, हमारी हमारा तवक्कुल शेक हो जाता है। अल्लाह वो गलतियां भी माफ कर दे। हो सकता है हमारी जबान से ऐसा कुछ अदा हो गया होगा, हमने तेरे फैसलों पर भी एतराज कर दिया होगा। करीम है मालिक, हमारे वो जुमले माफ कर दे, और अब हमें अपना भरोसा अता कर दे, हमें अपना यकीन अता कर दे, तेरे फैसलों पर इत्मीनान अता कर दे, और हमें फकत रिस्के हलाल अता फरमा। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये सीख कर जाना है, और कुरान का ये पैगाम है। अल्लाह करे कि हम अमल करने वाले बन जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी के प्यारे माहौल में ये बातें सिखाई जाती हैं, अल्लाह रसूल की मोहब्बत सिखाई जाती है। दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता रहें, इज्तिमात में शिरकत करें, मदनी चैनल देखें। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आज के इस इज्तिमा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।